ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 11। कृपया दोहराइए। नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो वधुतो मुख्यास्यम् विपणो वाग्रस विद्रस। नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम् विपणो वाग्रस विद्रस। नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यम् विपणो वाग्रस विद्रस। शब्दार्थ है नलिनी नलिनी नामक, नालिनी नालिनी नामक, नासे दोनों नथु ने, गंधा सुगंधित, सौरभ सौरभ सुगंध, उच्चते कहलाता है, घ्राण गंध की इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, अवधूत अवधूत नामक, मुख्या मुख्या नामक, आस्यम मुह, विपण विपण नामक, वाक वाणी, रसवित रसज्ञ स्वाद लेने में पटु, रस स्वाद की इंद्रिय। अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। अनुवाद नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासान छिद्र यानी नथुरे हैं और सुगंध को सौरभ नाम नामक नगरी ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है, मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है, रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय यानी जीभ है। तात्पर्य अवधूत शब्द का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। भगवद्गीता 6:34 श्लोक में कहा गया है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन अस्थिर मथने वाला जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। जिस प्रकार वायु किसी को रोक नहीं किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीभ के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले सब आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट ऐसा वक्ता नहीं हूं। जो भी मुझे सेवा मिली है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ भगवान के बारे में बोल सकूँ। जब मैंने चौथा ये जो स्कंद है उसका ये 29वां अध्याय पढ़ा, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत टेक्निकल है, तांत्रिक जैसा है, और उसमें रस लेना बहुत ही कठिन है। लेकिन जब तात्पर्य हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रभुपाद हमें बराबर मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कौन सी चीज पे फोकस करना है, ध्यान देना है। तो यहां पर भी ये अध्याय में नारद मुनि जो है वो राजा प्राचीन बरही को शरीर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और अलग अलग शरीर के जो शरीर जैसे नौ द्वार का एक नगरी है ऐसा बताया गया है, और अलग अलग इंद्रियां जो है हमारी ये अलग अलग द्वार है, और इतना ही नहीं तो हर जो द्वार है उसको अलग अलग नाम है। इतना ही नहीं, सभी जो ये इंद्रियां है उनके जो इंद्रिय विषय है उनके भी नाम है अलग अलग, और ये बहुत ही टेक्निकल है। हमें कभी मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे ऐसे नाम हो सकते हैं ऐसा, और लेकिन जब प्रभुपाद का तात्पर्य मैंने पढ़ा तभी पता चला कि मुझे कौन से चीज पे फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है। तो यहां पर शील प्रभुपाद जो है पाठक जो है उसकी रुचि को बनाए रखते हैं तात्पर्य के माध्यम से। यहां पर हम देखते हैं कि तात्पर्य का शुरुआत ही अवधूत शब्द से होता है। यहां पर श्लोक में बताया गया है घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम। तो अवधूत यह शब्द गंध के लिए यहां पर उपयोग किया गया है। तो अवधूत यानी क्या, जब भी हम अवधूत शब्द को मन में लाते हैं उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, कोई ऐसा एक साधु है, कोई एक तांत्रिक है, जो सभी सांसारिक जो कल्पनाएं हैं उससे परे है, उसको कोई सांसारिक इस जगत से कोई लेना देना नहीं, तो उसको कोई सांसारिक चेतना नहीं होती, द्वंद्व से वो परे होता है, सामाजिक कोई आवश्यकता है उसकी नहीं होती है, हर चीज में वो उदासीन रहता है। लेकिन फिर भी वो उसे आत्मचित या आत्मज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भौतिक जो जगत है ये केवल एक टेम्पररी वस्तु है। जो सांसारिक लोग हैं वो यहीं पर गलती करते हैं कि यहां पर आने के बाद सब चीज को वो परमानेंट समझते हैं। कोई जवान व्यक्ति है, समझता मैं परमानेंट कायम जवान रहूंगा। कोई सुंदर व्यक्ति है, वो सोचता है मैं ऐसे ही सुंदर रहूंगा, और इस तरीके से वो अपनी चेतना को प्रगत करते रहता है और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसमें भटक जाता है। जैसे एक हमारे ब्रह्मचारी, उसके लेक्चर में उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि समुद्र पे हम जाते हैं, समुद्र किनारे सी शोर पे, तो बच्चे लोग वालू में सैंड में ऐसा एक किला बनाते हैं, और किला बनाने बहुत ही उनको मजा आता है। साधारणतः ये किला बनाने के लिए वालू गीला होना चाहिए, तो पानी के नजदीक वो बनाना पड़ता है, तो पानी के नजदीक वो किला बनाते हैं, फिर जमीन के नीचे से शेक हैंड करते हैं, तो बहुत मजा आता है उनको, और ऐसा एक अचीवमेंट किया, ऐसा उनको एक सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन थोड़े ही समय में क्या होता है, हाई टाइड हो जाता है। हम लोग को मालूम है कि दिन में 4 बार 6-6 घंटे के बाद हाई टाइड होता है, तो जैसे ही पानी आता है वैसा उसका जो किला है वो बह जाता है, तो तुरंत बच्चा रोने लगता है। तो माँ बाप जो है वो समझाते हैं, अरे ऐसा नहीं है, ये टेम्पररी है, ये बहल के जाने वाला ही है। फिर वे चौपाटी पे हम देखते हैं कि बलून वाला है, बलून खरीदते हैं, बच्चा रोता है बलून देख के, मम्मी मुझे बलून चाहिए बलून चाहिए। मम्मी बोलते हैं अरे कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसमें हवा है खाली, थोड़े ही दिन में वो फूट जाएगा। नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ठीक है बाबा ले ले, दे देते हैं। बलून लेने के बाद वो खुश हो जाता है बच्चा, बच्चा सोचता है अरे वाह वाह, मेरे पास ये एक ऐसी चीज है, मैं सबको दिखा सकता हूँ, मेरे दोस्तों को, और मैं सबके सामने ऐसा बड़ाई कर सकता हूँ। और थोड़ी देर में वो आगे चल के जाते हैं, कुछ चीज से वो टकराते हैं बच्चा, और वो बलून फूट जाते हैं फट करके, फिर से वो रोने लगता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे का जो चेतना है वैसी ये सांसारिक लोगों की चेतना है, जो टेम्पररी चीज है उसको वो परमानेंट समझते हैं। और जब हकीकत सामने आती है, जब ये चीजें बदलती है, उनके हाथ से निकल जाती है, तब वो क्या करते हैं, दुख करते हैं। तो ये अवधूत जो व्यक्ति है वो आत्मज्ञानी रहता है, वो समझता है मैं कौन हूं, ये संसार कैसा है, उसकी उसका उससे कैसे हमें पेश आना है, ये अवधूत जो व्यक्ति है वो समझता है। लेकिन जो आम लोग हैं वो समझते नहीं कि वो खुद क्या है, खुद को भी नहीं समझते, इसलिए यहां पर जो अवधूत लोग हैं उनको आत्मज्ञानी भी कहा जाता है। वो आत्म को यानी खुद को पहचानते हैं, खुद की पहचान अच्छी तरह से उनके पास होती है। एक शब्दकोश में अवधूत की व्याख्या दी गई है कि जो सांसारिक चेतना, द्वंद्व और सामाजिक आवश्यकता के प्रति उदासीन होता है, लेकिन वो अपने शिष्टाचार और नियम का पालन उनको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक जीवन मुक्त जीवन मुक्त होने के वजह से वो दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है। और ऐसे कुछ जो मार्गदर्शन करने वाले अवधूत जो है वो कुछ उसमें से परमहंस बन जाते हैं, तो अभी सवाल है कि अवधूत और परमहंस में क्या फर्क है? तो परमहंस हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अच्छा ही देखता है, जैसे हंस का जो गुण है उसके ऊपर से ये परमहंस शब्द आया है। तो हंस जो है दूध और पानी अगर मिलाया जाए तो केवल दूध को प्राशन कर सकता है, ये उसमें गुण है। तो वैसे ही जो परमहंस लोग हैं वो केवल अच्छे चीजों को ही ग्रहण करते हैं या देखते हैं। दूसरी बात है कि वो हालांकि उनको कोई भी नियम शिष्टाचार का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मुक्त जीवन मुक्त व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सभी विधि विधानों नियमों वैदिक शिष्टाचार को पालन करते हैं अपने जीवन में। जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं तीसरे अध्याय में 21वां श्लोक में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवे इतरो जना सब यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो हमेशा केवल खुद के बारे में नहीं सोचता है तो पूरे समाज के बारे में सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि पूरा समाज उसकी ओर एक आदर्श के भांति देख रहा है। तो खुद का जो बिहेवियर है, खुद का जो बर्ताव है, वो इतना आदर्श वो बनाने की कोशिश करता है या उसको प्रकट करने की कोशिश करता है कि लोगों को एक अच्छा संदेश मिले, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसे इसमें भगवान कहते हैं कि मुझे कोई भी नियम विधि विधान पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरे अध्याय में कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं क्योंकि जो लोग हैं मेरा अनुकरण जो करने का प्रयास करते हैं उनको गलत संदेश ना मिले। तो वैसे ही ये जो परमहंस व्यक्ति है वो हमेशा अपने जो फॉलोअर्स है, अपने जो उनके ओर जो आदर्श करके देख रहे हैं उनकी चिंता करता है और अपना जो बर्ताव है वो एक आदर्श बर्ताव कैसे हो इसके लिए सभी विधि विधानों का पालन करता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने हमारे संस्था में ऐसा नियम बनाया है कि हम हमेशा शेविंग करेंगे, मूछ नहीं रखेंगे, तो इससे हम समाज को, लोगों को एक अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, जो एक्सट्रीम एंड में होते हैं, चरम स्तर पे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोशल ऑर्डर सामाजिक स्तर है, कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सोशल ऑर्डर में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी आते हैं, और स्पिरिचुअल जो ऑर्डर है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आते हैं। तो इन सभी में हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है एकदम लो प्रकार के लोग रहते हैं, एकदम निचले स्तर पे शूद्र है, और शूद्र से भी बदतर रहते हैं कुछ लोग, जैसे चांडाल है, वो कोई विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, उनको कोई नियम नहीं मान्य नहीं उनको, और वो समझते कि हमको कोई नियम लागू नहीं होता है। सभ्यता क्या है वो भी वो जानते नहीं, ऐसे वो लोग हैं, वो भी अवधूत के समान कभी कभी हमें नजर आते हैं, लेकिन वो अवधूत नहीं है। अवधूत ये शब्द उच्च स्तर के जो लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि वो अगर कोई शुद्ध भक्त के संग में आते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को बदल के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं और सभ्यता अपने जीवन में ला सकते हैं। और दूसरे एंड में अवधूत व्यक्ति है जो कोई भी नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपना आचरण एक आदर्श तरीके से करके वो पूरे समाज को मार्गदर्शन करते हैं। जैसे भागवत में कहा गया है कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा अपि उरुक्रमे। आत्मा राम मतलब खुद में वो आनंद का रस अनुभव करते हैं, क्योंकि वो खुद एक आत्मा है और परमात्मा के साथ आदान प्रदान करने की वजह से, प्रेम करने की वजह से जो भी रिश्ता है अपना, वो याद करके उसका रस वो अनुभव कर सकते करते हैं। आत्मा राम, आत्मा आराम, आराम मतलब यहाँ आराम नहीं है जो हम सोचते हैं कि व्यक्ति हाँ सोता हुआ है, 16 घंटा सो रहा है, उसको आराम नहीं यहाँ पर कहा है। आराम मतलब रिलीशिंग, वो रस का आस्वादन करते रहते। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। ग्रंथा, ग्रंथी मतलब क्या है, गांठ जिसको बोलते हैं, कोई बांधने वाला बंधन है उसको हम ग्रंथी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई बंधन नहीं होता है, कोई भी नियम विधि विधान का पालन करने की करने का बंधन उसके ऊपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो समाज के हित के कार्य के लिए खुद का आचरण अच्छा रखता है और सभी विधि विधानों का पालन करता है। जैसे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु को हम अवधूत कहते हैं, को उनको कोई नियम विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सभी नियम पालन करते हैं और एक मिसाल समाज के सामने पेश करते हैं। तो अवधूत शब्द है, हम सुनते हैं तो वो हमारे सामने एक चित्र तैयार हो जाता है जिसमें क्या है, व्यक्ति निर्वस्त्र है कभी कभी, या विचित्र वस्त्र पहने हैं, या उसका बर्ताव जो है वो विचित्र है, वो जमीन पे लोटपोट हो जाता है, या हंसता है, रोता है। शास्त्र में भी ऐसे अवधूतों का वर्णन आता है, जैसे राजा ऋषभदेव का आता है, या जड़ भारत का वर्णन आता है। ऐसे लोगों को संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, और इसलिए वो अपने आत्म में ही आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो हमेशा यही सोचते रहते कि लोग क्या कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हर व्यक्ति यही देखता है कि लोग क्या कहेंगे, और इसके लिए वो अपने आप को एक दाम्भिकता हम खुद में लाके एक डुप्लिसिटी मन में रख के उसका बर्ताव करता है करते हैं। मतलब उनके उनकी चेतना अलग होती है और जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है वो अलग रहता है, दाम्भिकता होती है। लेकिन ये जो अवधूत व्यक्ति है वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी जो अवधूत व्यक्ति है वो विचित्र अवस्था में हम पाते हैं। तो यहां पर गंध जो है, ये जो श्लोक में कहा गया है कि नलिनी नालिनी, ये दो नासिका है हमारी, और नासे गंध सौरभ उच्चते, और ये गंध जो है वो अवधूत के समान है। तो अवधूत जो व्यक्ति है उसको कोई बंधन नहीं रहता है, वैसे ही ये हमारी नासिका जो है उसको कोई बंधन नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे मुझे देखना नहीं है तो मैं आंख बंद कर लेता हूं, मुझे सुनना नहीं है मैं कान बंद कर लेता हूं, लेकिन मुझे सूंघना नहीं है इसलिए मैं नाक बंद नहीं कर सकता हूं। कर सकता हूं कुछ क्षण के लिए, लेकिन बाद में मुझे वो खोलना ही पड़ेगा। तो ये जो नासिका जो है बहुत शक्तिशाली है, और इसके लिए उसकी तुलना ये अवधूत व्यक्ति से की जाती है, क्योंकि अवधूत व्यक्ति भी कहीं पर भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, उसको कोई बंधन नहीं होता है। वैसे ही ये जो गंध है उसको कोई बंधन नहीं है रहता है। इतना ही नहीं, ये जो नासिका जो इंद्रिय है हमारी, वो इतर इंद्रियों को भी जगा देती है। जैसे बहुत अच्छा खुशबू आया महाप्रसाद का, तो हम तुरंत जान लेते हैं अरे महाप्रसाद आ रहा है। देखने की या किसी को बोलने की सुनने की आवश्यकता ही नहीं, केवल गंध लेने से ही हम जान सकते हैं। एक्चुअली सभी इंद्रियां हमारी एक साथ कार्य करती रहती और एक दूसरे को मदद करते रहते। कभी हम देखते हैं कोई चीज और देखने के बाद हमें अगर गंध नहीं है तो भी गंध आ जाता है, क्योंकि हम परिचित होते हैं वो व्यक्ति वो वस्तु और गंध उसकी उससे परिचित होते हैं, इसके लिए अपने आप गंध आ जाता है, शायद गंध होता भी नहीं। तो ये ऐसा जो गंध जो है उसकी तुलना यहां पर अवधूत इस व्यक्ति से की गई है। तो ये नासिका जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, हम जैसे देखा, और हम देखते हैं कि चतुष कुमार जो है वो केवल तुलसी जो भगवान के चरणों में लगी हुई है उसको सूंघने से क्या हो गए, परमहंस स्तर पर पहुंच गए। तो अवधूत जो एक व्यक्ति है उसके बारे में लोग अलग अलग धारणा रखते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग उनके निकट नहीं जाते हैं और उनको उनके साथ संग भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को कहते थे कि आप वंशीदास बाबा जी महाराज जो है उनको, वो एक परमहंस व्यक्ति है और वर्णाश्रम व्यवस्था से वो परे है, तो उनको आप कम मतलब नीचे के दर्जे कम दर्जे का मत समझिए, वो बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। तो हम जानते हैं कि वंशीदास बाबा जी महाराज का वर्णन आता है कि वो छड़ी लेके भगवान को ऐसा बोलते थे, अरे खाओ खाओ, क्यों खा नहीं रहे, मैं पिटूंगा नहीं तो तुमको, इतना वो उच्च स्तर पे थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि वो कभी बहुत दिन कभी कभी नहाते नहीं थे वो, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य को कहते थे कि आप जाइए उनका दर्शन कीजिए, उनका संगन मत कीजिए लेकिन उनका दर्शन कीजिए, और उनका जो बर्ताव है उसके ऊपर से कोई भी निष्कर्ष मत निकाले, क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, और मेरे लिए उनका उच्चिष्ट लाइए, ऐसा वो कहते थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि एक अवधूत व्यक्ति कितना उच्च स्तर का व्यक्ति होता है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि जीव जो है वो मूलतः मुक्त व्यक्ति है, एक लिबर उसको फ्री है, एकदम लिबर्टी है उसको, लेकिन इस शरीर की साथ पहचान करने से, शरीर के साथ तादात्म्य करने से वो इस सांसारिक जीवन में आसक्त तो हो जाते हैं। संसार की अनेक चीजों पर वो आसक्त तो हो जाता है, अनेक चीजें उसको चाहिए, आवश्यकता है उसकी बढ़ती है। इतना ही नहीं तो ये जो प्रकृति है उसके ऊपर प्रभुत्व करने की उसकी आकांक्षा बढ़ती है, और वहीं पर वो अटक जाता है, वो बंधन में फंस जाता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चंगुल में वो फंस जाता है। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि मनुष्य के दो स्तर है, उसमें से पहला स्तर है द्वेष और मत्सर वाले लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, और दूसरा स्तर है जो उच्च स्तर के लोग हैं, निर्मम निर्मत्सर। तो पहले जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग रहते हैं, 99% लोग द्वेष और मत्सर से भरे हुए हैं, भगवान का द्वेष करते हैं, भक्तों का द्वेष करते हैं, और दूसरों का मत्सर करते हैं, हर व्यक्ति का मत्सर करते हैं। और जो उच्च स्तर के लोग हैं उसमें दो गुण रहते हैं, निर्मम खुद का कुछ नहीं है, और निर्मत्सर किसी के साथ किसी का वो मत्सर नहीं कहते। इसलिए भक्ति के बारे में भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तो भी लिखते हैं 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरअहंकार सम सुख सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धि मद्भक्त समय प्रिय अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो ये जो सिम्टम्स दिए हैं भगवान ने, ये सिम्टम है आध्यात्मिक जगत के, कि आध्यात्मिक जगत में लोग कैसे है, जीव कैसे है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हर जीव के प्रति उनको करुणा रहती है, प्रेम रहता है, लेकिन द्वेष कभी नहीं रहता है। करुणा एवच मैत्र करुणा एवच, जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अलग अलग स्तर के व्यक्ति से हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो निचले स्तर के लोग हैं उनके ऊपर हम करुणा दिखाते हैं, हमारे स्तर के ऊपर है उनको उनके साथ मैत्री करते हैं, और जो हमारे से वरिष्ठ है उनको उनकी सेवा करते हैं, उनका संग करते हैं। तो ये लक्षण है भगवत धाम में जो जीव है उनका। और निर्मम, उनका कुछ नहीं है, निरअहंकार, कोई भी मन में अहंकार नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, और सुख और दुख में वो हमेशा समान रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और क्षमी, हर चीज के लिए और हर अपराध के लिए दूसरों के क्षमा कर देते हैं। तो ये जो वर्णन है वो केवल हमें आकृष्ट करने के लिए भगवान यहां पर देते हैं, हमें आकर्षित करने के लिए कि कैसे हम हमारे में हमारे जीवन में बदलाव लाए, ताकि हम जो भगवत धाम का वातावरण है उसमें हम एडजस्ट हो सके। क्योंकि कभी भी हम जैसे एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं तो एडजस्ट करना बहुत कठिन होता है। जैसे धूप से आप धूप में घूम के आए और एयर कंडीशन रूम में आप प्रवेश करते हैं तो तुरंत हमें एक अलग ही अनुभव हो जाता है। तो वैसे ही हमें मालूम होना चाहिए, जो जिस व्यक्ति को मालूम नहीं कि एसी का इफेक्ट क्या होता है तो वो तुरंत घबरा जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि एसी क्या है। वैसे ही हमें मालूम होना चाहिए कि भागवत धाम में वातावरण कैसा है, वैसे वहां पर कैसे हमें बर्ताव करना है। तो इसके लिए यहां पर भगवान हमें ये ज्ञान देते हैं। तो भगवत धाम में सभी जीव मुक्त है, सभी जीव अवधूत के समान है, परमहंस के समान है। वहां पे कोई बंधन नहीं है, किसी का कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को ऐसा थोपा नहीं जाता है कि आप ये करना है। जैसे हमको कहा जाता है कि सुबह मंगल आरती में आना है, जप करना है, कोई बंधन नहीं है, सब जीव मुक्त है। लेकिन सभी जीव अपने स्वेच्छा से सभी बंधनों को अपने ऊपर वो लागू कर देते हैं। तो 15वें अध्याय में भगवान हमें भगवत धाम का वर्णन बताते, उसमें 6ठे श्लोक में दिया गया है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो इसमें ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपद इतना सुंदर चीज बताते हैं। प्रभुपद कहते हैं इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध होना जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो इस तात्पर्य से प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कृष्ण भावना अगर हमारे जीवन में हम अपनाते हैं तो कितना आसानी से हम इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और एक अवधूत व्यक्ति का जो गुण है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो हम साधक हैं, जैसे हम कलयुग में हैं और इस भौतिक जगत में हैं, तो साधक हैं। अनेक नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में आना, जप करना, श्रवण करना, वाचन करना, प्रचार करना। तो बहुत बार हम सोचते हैं, नहीं, साधारणता व्यक्ति हमारे मंदिर में आता है, भक्ति में आता है तो क्या सोचता है, वो कुछ कठिनाई में होता है। आर्थ व्यक्ति होता है ना, जैसे आर्थ जितने असुअर्थ थी भगवान कहते हैं, आर्थ व्यक्ति ज्यादा होते हैं जो वह मंदिर में आते हैं, कुछ कठिनाई है तो मंदिर में आता है, सोचता है कि मेरी कठिनाई दूर हो जाएगी। हम भी भक्त बनते हैं तो सोचते हैं कि अभी मैं भक्त बन गया है, अभी कोई मेरे जीवन में कठिनाई नहीं है, केवल जप करो, चार नियमों का पालन करो और अंतिम क्षण में हरे कृष्ण जप करो, स्मरण करो और भगवत धाम निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बहुत, मतलब सोचने में बहुत आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान, जब तक हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं तब तक अंतिम क्षण में स्मरण करना भी बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान 10वें अध्याय में 10वां श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतते युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम दम ये न माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं मेरे पास आने के बुद्धि भी मैं ही देता हूं। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमें अंतिम क्षण में भगवान का अगर स्मरण करना है तो वो भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है। हमारे खुद के बलबूते, हमारी ताकत से, हमारी शक्ति से ये संभव नहीं है। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है क्योंकि अंतिम क्षण कौन सा कभी आएगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और इसलिए भक्ति की परिभाषा यही कही जाती है, हे तुकी अप्रतिहता, अखंड सतत स्मरण करने का प्रयास करना है हमें। ये भक्ति हमारा कवच है वैसे देखा गया तो। जितनी गंभीरता से हम भक्ति करेंगे उतनी कठिनाइयां हमारे लिए आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं होगी, उल्टा होता है। हमेशा भगवान टेस्ट करते हैं कि जब भी हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें, हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा कठिनाइयां आती है तो हम देखते हैं कुंती महारानी, पांडव, व्रजवासी, गोपियां, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। फिर भी जो साधारण व्यक्ति के जीवन में जितनी कठिनाइयां आती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा कठिनाइयां इन व्यक्तियों के जीवन में आई है। लेकिन जहां कठिनाई है वहां भक्ति है, साधना भक्ति है। तो ये साधना जो है यही हमारी क्या है, शक्ति है। जप करना, नियमों का पालन करना, जो भी सेवा है वो करना। सचिनानंद महाराज अपने एक किताब में लिखते हैं नाम रहस्य में कि व्यक्ति जब भक्ति का स्वीकार करने की इच्छा करता है बहुत सारी कठिनाइयां आती है, वो भय का अनुभव करता है, उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में। और इस दिव्य के गुजरने के बाद आध्यात्मिक स्तर पर जीवन व्यतीत करना वो सीख जाता है। जैसे भौतिक जगत में भी एक रेशम का कीड़ा का उदाहरण दिया जाता है कि रेशम का कीड़ा जो है वो कोश रहता है, कोश में बंधा हुआ रहता है, वो खुद वो तोड़ता है। तो वो तोड़ने का जो प्रयास जो उसका है वही उसको क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, उसमें एक क्षमता आ जाती है। अगर आप वो कोश को तोड़ देंगे तो वो कीड़ा मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है, क्षमता नहीं आई है। तो ये जो उसका जो प्रयास है, उसकी जो उसका जो युद्ध है, उसकी उसी से उसको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और उससे क्षमता आ जाती है। तो वैसे ही कठिनाई हमारे जीवन में जरूरी है। इस कठिनाई से ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे हम में ताकत या क्षमता ला सकते हैं। और इस कठिनाई से ही हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयां आए ताकि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। तो ये डर जरूरी है, हमेशा हम एक डर का अनुभव करना चाहिए। अगर हम निडर हो गए तो क्या होगा, हम कृष्ण को भूल सकते हैं, उनका स्मरण करना भूल सकते हैं। जैसे प्राकृत जगत में कहते हैं कि जब कानून का डर खत्म होता है तो व्यक्ति क्या होता है, गुनहगार होता है, वो अलग अलग क्रिमिनल हो जाता है। इसलिए डर होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही हमारे जीवन में डर होना चाहिए कि अरे मैं ये जीवन को अगर यशस्वी नहीं बना सका तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो ये असहाय व्यवस्था अवस्था हमारे में आनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी हमें कहते हैं कि वी हैव टू चैंट लाइक अ क्राइंग बेबी, एक छोटे बच्चे के तरीके से हमें रोना है, ये रोना हमें सीखना है, क्योंकि हम बहुत ही दारुण अवस्था में हैं, करुण अवस्था में हैं, और ये अवस्था हमें पहचाननी है। बहुत बार हम पहचानते नहीं हैं। बहुत बार भौतिक जगत में क्या कहते हैं, ऑल इज वेल, हाँ सब कुछ अच्छा होगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी कठिनाइयां है तो हम जागरूक रहते हैं, समर्पण का भाव हम में आ जाता है और कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने की हमें आदत हो जाती है। तो इसके लिए कठिनाइयां आने के लिए हमें चैलेंजेस स्वीकारनी चाहिए, कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोई सेवा लेनी चाहिए। तो अगर हम कोई जिम्मेदारी लें मंदिर के प्रति या हमारे संस्था के प्रति, प्रचार के प्रति, तो क्या हो सकता है, हम हमेशा कठिनाई में रहेंगे। आसान नहीं है कोई भी चीज। तो कठिनाई है तो भगवान का स्मरण है, समर्पण है, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है। अगर कोई कठिनाई है नहीं है तो हम भगवान का स्मरण करना बहुत ही मुश्किल है। तो कठिनाई है, अनर्थ है, मतलब हम सोचते हैं ऐसा, तो भगवान का स्मरण वो कराती है। इसलिए कठिनाई अच्छी है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कठिनाई आती है, अगर वो भगवान के प्रति है, भगवान की सेवा के प्रति है, तो वो अच्छी है। तो इस श्लोक से हम यही जान लिया है कि एक अवधूत जो स्तर है वो एक मन से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद यहां पर चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म ये श्लोक को उद्धृत करते हैं। इसलिए मन को बलिष्ठ करना है, और मन को बलिष्ठ कैसे कर सकते हैं कि कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने से, कृष्ण का नाम जप करने से, कृष्ण प्रसाद लेने से, कृष्ण और कृष्ण की भक्तों की सेवा करने से, और तभी हम अच्छी तरह से इस जीवन को यशस्वी बना सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। धन्यवाद।